आज हम आपको पांच चीजों के विषय में विशेषता से बताएंगे। पांच चीजों का त्याग कैसे किया जाता है? यदि इन पांच चीजों का त्याग हो जाए तो अनन्य भक्ति सुगम हो सकती है। किसी कवि ने कहा है कि कंचन तजबो सहज है, सहज तिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ए। जो उच्च कोटि के महात्मा होते हैं, साधक होते हैं, उनके लिए कंचन का त्याग सहज है, स्त्री का त्याग भी सहज है, परंतु मान बड़ाई ईर्ष्या का त्याग बहुत कठिन है। ऊंची से ऊंची अवस्था में भी मान बड़ाई और ईर्ष्या का त्याग करना बड़ा कठिन है, लेकिन साधारण लोगों के लिए तो कंचन और कामनी भी कम घाटी नहीं है। कंचन और कामनी एवं उनसे मिलने वाले सांसारिक पदार्थ, स्त्री, बाल, बच्चे, ये सब उसी में ही आ जाते हैं। ये सब विघ्न देने वाले हैं। पहला तो ये समझना चाहिए कि रुपए का त्याग बड़ा कठिन है। एक कहानी आती है, एक लोभी वैश्य था। वह भजन ध्यान भी करता था और कंचन कामनी में बड़ी प्रीति थी। वह पूजा पाठ के लिए बैठता तो उसकी स्त्री अपने बच्चे को उसके पास बैठा देती और हाथ में लड्डू दे देती और रसोई बनाने चली जाती। इधर कौवा आता और वो बच्चे के हाथ में से लड्डू छीनने का प्रयास करता। तब वह वैश्य भगवान का ध्यान तो छोड़ देता और हाथ में डंडा लेकर कौवे को डराता था। ये इसका रोज का क्रम था। उसके मन में यही ध्यान रहता कि बच्चे से कोई मिठाई न ले जाए, और मन में ये समझता था कि मैं रोज भगवान का ध्यान करता हूं। वो एक सत्संग करता था, किसी महात्मा के पास जाया करता था, महात्मा जी से रोज सत्संग की बातें सुनता था। महात्मा जी ने पूछा, भाई कोई बताओ, किसी को कोई बात पूछनी हो? तो उसने पूछा कि महाराज, एक बात मुझे पूछनी है कि मैं रोज भजन ध्यान में बैठता हूं, समय लगाता हूं, लेकिन मेरा मन नहीं लगता है। महात्मा जी ने कहा, देखो भाई, भगवान के भजन का आप आदर करोगे तो मन लगेगा। आप भगवान के भजन का आदर नहीं करते हो। तब उस वेश्य ने कहा, नहीं महाराज, मैं आदर तो खूब करता हूं, जल्दी नहा धोकर के भगवान के ध्यान में ही बैठता हूं, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं। महात्मा जी चुप हो गए, क्योंकि अच्छे पुरुष होते हैं वो किसी की बात को काटने में समय नहीं लगाते कि उसकी बात को कैसे काटे जाए, बहसबाजी नहीं करते, चुप हो गए। एक दिन महात्मा जी चुपचाप उसके घर पर गए। महात्मा जी ने देखा वो ध्यान की मुद्रा तो यूं बैठ गया, मुद्रा बना करके, पास में बच्चा बैठा है, हाथ में वो लड्डू, और कौवा आता है उसको डरा रहा है। महात्मा जी ने सब देख लिया। देख करके महात्मा जी जैसे आए थे चुपचाप, वैसे ही चुपचाप चले गए। वो फिर महात्मा जी के पास आया, महात्मा जी के पास आया और बोला कि महाराज, कोई ऐसा उपाय बताओ, भगवान के भजन में मन लगे, महात्मा जी ने कहा कि देखो मैंने तो पहले जो बात कही वही बात है कि भजन ध्यान में आदर दोगे, महत्व दोगे तो तुम्हारा मन लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा कि मैं तो देता हूं आदर, कि तुम एक कोड़ी जितना आदर नहीं देते। महात्मा जी तपाक से बोले। वेश्य ने पूछा महाराज वो कैसे, तो महात्मा जी ने कहा कि मैंने तुम्हारा भजन ध्यान देख लिया है, वहां जाकर के देख लिया। तुम अपने बच्चे को लड्डू देते हो क्या? देता हूं। वो लड्डू कितने का आता है? कि 2 पैसे का। तो 2 पैसा, अच्छा 2 पैसे में कोड़ी कितनी होती है? उस वेश्य ने कहा 128 कोड़ी होती है। उसमें पैसा कोड़ी का ही जमाना था, तो 128 कोड़ी का 1 पैसा होता है, नहीं 64। 2 पैसे कितनी कोड़ी में? 64 में। 1 पैसा 1 पैसे में 64 कोड़ी, तो 2 पैसे में 128 कोड़ी, तो 2 पैसे में लड्डू आता है। और 1 माला फेरने में कितना समय लगता है? कि 10 मिनट। 10 मिनट में कितना नाम ले लेते हो? कि 108। तुम्हारे लड्डू को, तुम्हारे लड़के को लड्डू खाने में कितना समय लगता है? कि 20-25 मिनट। इतने में तू कितनी माला जप लेगा? कि 2 माला जप लेता हूं, जप सकता हूं। तो 2 माला में 216 मंत्र होते हैं और नाम 3456 होते हैं। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसे करें। अब तुम हिसाब लगाओ, तुम भजन ध्यान को ज्यादा महत्व दिए कि कोड़ी को महत्व दिए? हमारे सामने तो 128 कोड़ी है और 3456 नाम है। तुमने कोड़ी को महत्व दिया है, नाम को महत्व नहीं दिया, एक कोड़ी जितना भी महत्व नहीं दिया। लड्डू की तरफ तुम्हारा ध्यान जाता है। जब प्रधान तुम्हारे मन में ये बात बैठी हुई है, मेरा बच्चा खुश हो जाए, मेरे बच्चे को लड्डू मिले, ये अंदर में बात बैठी हुई है, फिर तुम्हारे कैसे भजन ध्यान होगा? भगवान से बढ़कर किसी को भी संसार में मत मानो। जितना आप आदर दोगे उतना ही आपका मन भगवान में खिंचता चला जाएगा। भगवान का तो हम आदर नहीं करते, उल्टा निरादर करते। मिलना चाहिए हम लोगों को दंड, पर भगवान दंड नहीं देते, बड़े दयालु हैं, चुपचाप सब सह लेते हैं। तो इस वेश्य की कथा से हमको ये सीखना चाहिए कि भगवान के भजन ध्यान का आदर करना चाहिए। अब आपको दूसरी बात बताते हैं। महर्षि पतंजलि ने कहा है मन को रोकने की, वहां पतंजलि में अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध है, माने मन की वृत्तियों को रोकना हो तो अभ्यास और वैराग्य से रोको। आजकल हम लोग अभ्यास की तरफ तो थोड़ा बहुत ध्यान दे सकते हैं, पर मन में वैराग्य है ही नहीं। हम ये देखते हैं कि विषयों को भी भोगते रहे और जिस समय भजन ध्यान करें उस समय हमारा मन भगवान में भी लगना चाहिए। तो ये अभ्यास और वैराग्य के द्वारा जो मन लगाना चाहिए था उसमें वैराग्य तो हटा दिया, और अभ्यास को बार बार करते हैं तो उससे मन लगता नहीं है। 2 चीजों से मन लगता है। एकांत में बैठो, चाहे व्यवहार में जाओ, भगवान की स्मृति रहनी चाहिए। कार्य करते समय भगवान की स्मृति ठीक नहीं होती तो कोई बात नहीं है, भीतर में भाव तो रखो कि ये कार्य भगवान का है, इतना तो समझो। जैसे स्त्री भोजन बनाती है, रोटी बनाती है, साग बनाती है, बिलोना करती है, और वो यही करती है कि मैं परिवार के लिए करती हूँ, पति है पुत्र है इनके लिए करती हूँ। अंदर में भाव क्या है? क्या रोटी बनाते हुए पूरा रोटी में ही मन रहता है? क्या बिलोना करते समय बिलोना में ही मन रहता है? मन तो उसका परिवार के लिए करती हूँ, परिवार में रहता है। इसी प्रकार आप भगवान का समझ के काम करोगे तो व्यवहार में भी आपके भगवान की स्मृति रहेगी। आजकल लोग एकांत में बैठने की बात तो कहते हैं पर एकांत में नींद लेते हैं, गाढ़ सुसुप्ति में आनंद आता है, ये बेसमझी की बात है। भगवान तो उल्टी बात बोलते हैं कि निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामसम उदारितम। निद्रा आलस्य और प्रमाद का नाम ही तामसी क्रिया है। कोई कहता है कि उपनिषदों में लिखा है महात्मा और पागल एक जैसे होते हैं, तो क्या हमको पागल हो जाना चाहिए? नहीं भाई, महात्मा और पागल एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे होते नहीं है। हम पागल को क्यों पकड़े? हम तो महात्मा को पकड़े। महात्मा ही होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। छठी भूमिका में पहुंचने पर महात्मा की दशा पागल की तरह होती है और किसी किसी का आचरण बालक की तरह होता है। ये बात है, तुम बाहर से दिखने के लिए पागल का रूप भले ही पागल की नकल कर लो पर वो पागल नहीं। अंदर से तो होशियारी रखोगे, बाहर से पागल बनोगे ये पाप की बात है, ये दिखावटी बात है। दिखावटी बात से पाप बढ़ता है। चौथी भूमिका होती है, उसमें ये संसार स्वप्न की तरह दिखता है। सोने पर स्वप्न सोने पर आता है, जागने पर वो समझता है कि ओहो ये तो सपना आया था। ऐसे ही जब मनुष्य जागता है तो स्वप्न के संसार को स्वप्न देखता है, वह देह से रहित होता है, उसका नाम विदेह हो जाता है। महात्मा को सारा संसार स्वप्न की तरह झूठा दिखता है, उसके मन में वैराग्य है, न किसी से राग न किसी से द्वेष न हर्ष न शोक। स्वप्न के संसार का नाम तो भूतकाल है, किसमें ममता करें। पांचवी भूमिका में सुषुप्ति अवस्था होती है और छठी भूमिका में गाढ़ सुषुप्ति होने पर फिर पत्थर की सी अवस्था हो जाती है। कई दिनों तक कोई जगाए तो जगे, संसार का बाहरी ज्ञान होता ही नहीं, पर वो सोने के समान थोड़े ही, सोना तो तामसी है। एकांत में जाकर जो भजन ध्यान के बहाने सोते हैं वे गलत रास्ते पर है, खतरे में है। परमात्मा की प्राप्ति में विलंब होना ये खतरा है। लोग समझते हैं कि गुफा में ध्यान के लिए जावे, परंतु ऐसे आदमी लोगों को ठगते हैं। गीता जी में कहा है, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरन, इंद्रियार्थान विमूढात्मा मिथ्याचार से उच्यते। बाहर से तो इंद्रियों को रोकते हैं, अंदर से संसार का चिंतन करते हैं, वो मिथ्याचारी होता है। साधक एकांत में बैठकर इंद्रियों को विषयों से रोकने का प्रयत्न करता है, फिर भी उसको यदि चिंतन होता है तो उसकी कमजोरी है, पर इस कमजोरी की परवाह न करे। उसको विचार करना चाहिए कि अरे मानव शरीर में इसी कमजोरी को हटाना है और साधन करके ही हम हटा सकते हैं। बुरा भाव आना ही नहीं चाहिए। ये बुरा भाव क्यों पैदा हो गया? ओहो, जिस जीवा से भगवान का नाम ले सकते हैं उसे हम क्या बोल रहे हैं? जिस मन से हम भगवान का चिंतन कर सकते हैं उस मन से हम क्या चिंतन कर रहे हैं? ऐसा सावधानी का बर्ताव करते हुए भगवान का नाम और आदर, भगवान के नाम का और भजन ध्यान का आदर करना चाहिए। क्योंकि हमारा लक्ष्य संसार के भोगों का नहीं है, हमारा लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति का है। जिसका जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता वो व्यर्थ ही जीता है। जैसे मोटर है, चलती तो है पर उसका लक्ष्य थोड़ा ही होता है। बिना लक्ष्य के छोड़ी हुई मोटर क्या होती है? मोटर को स्टार्ट करके ढलांस में धक्का देकर उसको छोड़ दो, अब मोटर को कोई संभालने वाला, मोटर यूं गुड़गती रहेगी, किसी में टक्कर खाएगी, टूट फूट हो जाएगी। ऐसे हमारा जीवन बिना लक्ष्य के संसार में ढलता जा रहा है, टूट फूट हो जाएगा। सावधान रहो, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति से बढ़कर यहां कुछ भी काम नहीं है। संतों के, महात्माओं के वचनों पर विश्वास करो। एकांत में जाकर ध्यान करने की बात कहते हैं पर एकांत में निद्रा लस्य की बाधा बहुत आती है, इसका त्याग करना चाहिए। ये बात भगवान ने कही है, एकांत में रहो, लेकिन वो भजन ध्यान की विशेष बात के लिए कही है। भगवान ने कहा है कि भाई भक्ति करो, अनन्य भक्ति करो, मेरे सिवाय और किसी का चिंतन नहीं होना चाहिए। परमात्मा में चित्त की वृत्तियों का समावेश कर दो, अर्थात चित्त जहां भी जाता है वो भगवान को छोड़ करके नहीं जा सकता। जहां भी मन जाए उसको भगवान में गया है ऐसा मानना चाहिए। भगवान की भक्ति निष्काम भाव से करनी चाहिए। एकांत में रहो और भाव जागृत रखो। जन समुदाय में रहो तो सावधान रहो कि कहीं जन समुदाय में प्रीति नहीं हो जाए। सिद्ध ये हुआ कि भाई ध्यान के समय जन समुदाय का संग न रहे और व्यवहार के समय में प्रीति न हो जाए, दो बात है। ध्यान के समय एकांत और व्यवहार के समय में जनसंग में प्रीति न हो, दोनों बात सावधानी से रखनी चाहिए। स्वाध्याय करना है, जैसे गीता, रामायण, भागवत और महापुरुषों की बातें मिल जाए पढ़ने सुनने को, इसको स्वाध्याय बोलते हैं। इस स्वाध्याय से बहुत काम होता है, हमारा आलस्य विक्षेप दूर हो जाते हैं। जिसमें महापुरुष मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। अभ्यास वैराग्य की अपेक्षा, अभ्यास वैराग्य की अपेक्षा नाम जप, केवल नाम जपना है तो सरल दिखता तो है, राम 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 करते हैं, पर अभ्यास वैराग्य के बिना जो नाम जप होता है वो केवल क्रिया हो जाती है। लाभ तो होता है पर बहुत समय लगता है। लाभ करते हुए भी अभ्यास और वैराग्य तक पहुंचते हैं तब लाभ दिखता है, तो अपने पहले से ही अभ्यास वैराग्य को पकड़ लेना चाहिए। भगवान का नाम जप और ध्यान दोनों साथ में चलना चाहिए। भगवान ने भी कहा है, अभ्यास ने तो कौनते है वैराग्य न च गृह्यते। गीता में और भी कहा है कि जहां जहां ये मन जाए वहां से इसको अपने में स्थित करना चाहिए, आत्मा में लगाना चाहिए। और वैराग्य के लिए बताया है कि ये ही संस्पर्श जाप होगा, दुख योन एवते। जितने ये संबंध जन्य सुख है वो दुख देने वाले होते हैं। संसार के भोगों के अंदर दुख देखना चाहिए। जैसे सांप है, चिकना चिकना उसका चमड़ा रहता है, बहुत अच्छा लगता है, रंग बिरंगा है, पर कोई उसको पकड़ता नहीं है। क्यों? क्यों? सब जानते हैं अरे इसमें जहर है, ये हमको खा जाएगा तो हम मर जाएंगे। ऐसे विषयों को देखना चाहिए कि ये ऊपर ऊपर से अच्छे लगते हैं, चिकने चुपड़े लगते हैं, परंतु इनके अंदर यदि हम फंस गए तो ये हमको दबोच लेंगे। कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, उनमें भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ है। पर क्या करें, इस भक्ति को कोई आदर की दृष्टि से देखता ही नहीं। भगवान कहते मेरा भजन करता है उससे बढ़कर कोई श्रेष्ठ पुरुष नहीं हो सकता। सब में आत्मा समझकर जो सबके हित का बर्ताव करता है वो बहुत श्रेष्ठ होता है। भगवान ने भी कहा कि मुझ सगुण साकार का भजन कर, मेरे में चित्त लगाता है मैं पार कर देता हूं, ये अनन्य भक्ति है। कोई सगुण साकार का दर्शन करने वाला दर्शन चाहे तो भगवान कृपा करके दर्शन भी दे सकते हैं, परंतु हमको तो भजन ध्यान में ही मस्त रहना चाहिए। दर्शन, तत्वज्ञान, मुक्ति, ये तीनों चीजें भक्ति से हो तो सकती है, परंतु भक्ति अपने आप में सबसे ऊंची, सबसे श्रेष्ठ है और महत्व की चीज है। इस शरीर में मैपना मत रखो, ये शरीर आपका नहीं है। साधक को इस बात का आदर करना चाहिए। गोपियां जब ध्यान करती थी और काम भी करती थी, उंखल में धान कूटती थी, दही बिलोती थी, दूध दूती थी, सारा काम करती थी, लेकिन अंदर से वे भगवान से जुड़ी हुई थी। भगवान ने कभी गोपियों को ये नहीं कहा कि तुम रोटी मत बनाओ, उंखल में धान मत कूटो, दही मत बिलो, गाय मत रखो, दूहो मत, ऐसा कहीं नहीं कहा है। बल्कि भगवान ने यही कहा कि तुम्हारे जैसा प्रेम तो देखकर मैंने तुम्हारा ऋण मान लिया है। एक बार मैंने एक नाटक देखा, सेठ जी कह रहे, एक बार मैंने एक नाटक तमाशा देखा, नट और नटनी दोनों एक रस्से में बंधे हुए थे, रस्से बांधे गए नट और नटनी के लिए, नट और नटनी के लिए एक रस्सा बांध दिया है। अब वो सिर पर हांडी रख करके रस्से के ऊपर चलने लगे। जो नटनी थी वो तो सिर के ऊपर हांडी रख ली, और जो नट था उसने अपने गले में एक ढोलक रख लिया। दोनों ही रस्से पर चलते हैं, वो तो ढोलक बजाता है और नटनी रस्से के ऊपर नाच रही है। हमको बड़ा अचंभा हुआ कि देखो दो पैसे कमाने के लिए कितना बड़ा खतरा मोल लेते हैं, कितना अभ्यास किया है, कितनी ऊंचाई से रस्से पर चल रहे हैं, जरा सी चूक हो जाए, एक सूत में भी चूक हो जाए, या तो नट या नटनी या दोनों गिर पड़ सकते हैं, मर सकते हैं, चोट आ सकती है, परंतु उन्होंने इतना बड़ा खतरा मोल लिया। अब कोई कहे कि वे केवल ढोल बजाते होंगे, हांडी रखे होंगे, कि नहीं, वो अंदर से बड़े सावधान थे। नटनी अपने पैरों से नाचती थी तो वो ब्रश्से को सावधानी से पकड़ती थी, ऐसे ही नट ढोल बजाते हुए रस्से के ऊपर चल रहा था तो सावधान था। क्या ऐसी सावधानी भगवान के लिए हमारे है? बिल्कुल नहीं है। ढोल बजाते हैं, ध्यान पैरों पर रखते हैं, काम पूरा करते हैं, लेकिन ऊपर का काम करते हुए भी अंदर से कैसे वे उस अभ्यास पूर्वक रस्से को पकड़े हुए रखते हैं। ऐसे सब काम करते हुए हमको भगवान का ध्यान करना चाहिए। दूसरी जगह से मन हटाकर भगवान में लगाना चाहिए। ये मन व्यर्थ में ही भोगों का चिंतन करता है, फालतू बातों का आदर करता है, चिंतन करता है। मेरा कहना है कि आपको 16 आना ध्यान भगवान में लगा देना चाहिए। ये अभी कर सकते हो, आगे नहीं होगा, परंतु हम तो अवेल ना करते। हमको कई कई बार आश्चर्य होता है, हम दुख तो नहीं चाहते हैं पर काम वही करते हैं जिससे दुख पैदा हो। ये दुख कौन बनाता है? ये मन बनाता है। इसलिए इस मन को परमात्मा का चिंतन कराओ। ये जो आपके मन में विषय भोगों की आसक्ति है, इसका कोई मूल्य नहीं है। संसार में यदि मन जाता है तो एक खतरे की घंटी है, और भगवान की बात अच्छी लगती है तो आप समझो कि आपकी मुक्ति है। आप परमात्मा की प्राप्ति में लगे और भोगों का आदर नहीं छोड़ा तो आप क्या करोगे? योग भ्रष्ट में चले जाओगे, जहां स्वर्ग का भोग भोग लोगे और क्या होगा? लेकिन जो परमात्मा की प्राप्ति का आनंद है, उससे तो नीचे ही रह जाओगे। रुपयों की प्राप्ति खराब समझ करके लात मारनी चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति में बहुत बाधा देने वाली चीज है। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, रुपयों का हृदय से त्याग करना चाहिए। पुरुषों को कामनी का और स्त्रियों को पुरुषों का, पर पुरुष का त्याग कर देना चाहिए। चाहे स्वयं स्त्री हो, चाहे अपना पति भी क्यों न हो, भीतर से काम वासना का त्याग कर ही देना चाहिए। काम वासना के त्याग के लिए ही पति और पत्नी का संबंध होता है। स्त्री में प्रेम करना बहुत खराब है। विचार करो कि शरीर में टट्टी पेशाब के अलावा क्या है? गंदगी की टोकरी है। मरने के बाद टट्टी पेशाब का कीड़ा बनना पड़ेगा। दोनों में ये बात है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, दोनों को यही समझना चाहिए। शरीर को टट्टी पेशाब का टोकरा समझना चाहिए। परमात्मा का ध्यान करो, कितना गंदा शरीर मिला लेकिन कितना ऊंचा काम हो सकता है, इधर विचार करना चाहिए। भगवान ग्वाल बालों को और बछड़ों को अपने रूप प्रदान की, माने ग्वाल बाल भी बने और बछड़े भी बने। कैसी भगवान की लीला हुई! ब्रह्मा जी जान गए, रहे ये तो भगवान है। भगवान वास्तव में जन्मते मरते नहीं है पर ऐसी लीला करते हैं। ऐसी लीलाओं में अपने को खो देना चाहिए। भगवान ने ऐसी ऐसी लीलाएं हमारे मन को अपनी ओर खींचने के लिए किए, और भगवान का लीला करने का मतलब क्या है? शुद्ध भगवान के साकार रूप में प्रेम न करके आप हाड़मांस के पुतले में प्रेम करते हैं, कितनी मूर्खता की बात है। आप ईमानदारी से विचार करो, जिस स्त्री में प्रेम करते हैं उसका गुण प्रभाव देखो और भगवान का गुण प्रभाव देखो। भगवान के गुण प्रभाव के सामने कोई चीज महत्व की नहीं रहती, किसी का भी वहां सौंदर्य नहीं रहता। पूतना को देखो, मारने के लिए आई और भगवान ने उसको मुक्ति प्रदान की। यशोदा जी धमकाती हैं, भगवान कांपते हैं। आंगन में रहती थी तो मुक्ति तो यशोदा जी के आंगन में लौटती थी। भगवान की बाल कथा में एक प्रसंग आता है, एक ब्राह्मण देवता यशोदा मैया के यहाँ गया। गया क्या, यशोदा मैया ने बुलाया कि एक ब्राह्मण देवता को भोजन कराए। ब्राह्मण देवता गए, ब्राह्मण ने कहा देखो जी, हम हमारे हाथ से भोजन बनाते हैं, हम दूसरे के हाथ का बना हुआ भोजन नहीं करते, हमको सामग्री दे दो, हम भोग लगा करके भोजन करेंगे। यशोदा जी ने कहा ले लो, दूध दे दिया, चावल दे दिया, खीर के लिए सब सामान दे दिया, आटा दे दिया, सामग्री दे दी, भोजन बनाया। बड़े प्रेम से ब्राह्मण देवता ने भगवान का स्मरण करते करते भोजन बनाया, और भोजन बनने के बाद वो हाथ जोड़ करके आंख बंद करके भगवान को अर्पित करे, हे भगवान ये भोजन का आपके भोग लगाते हैं। अब विचार करो, यशोदा मैया जिस ब्राह्मण को भोजन के लिए बुलाएंगे और जिस घर में साक्षात भगवान हो और वो ब्राह्मण देवता भगवान को भोग लगाए, तो भगवान कैसे रहेंगे, गुडाले गुडाले चलते चलते आए और भगवान उसकी खीर सबोड़ने लग गए। आँख खोली, छोटा सा बच्चा उसने ऊँटा कर दिया। अब उस बच्चे को वो ब्राह्मण बोले भी क्या, यशोदा जी से कह दिया, यशोदा जी मेरे से गलती हो, यशोदा जी ये आपके बच्चे ने तो हमारा सारा बना बनाया रसोई का सब ऊँटा कर दिया है। ओ ब्राह्मण देवता, ये तो मेरी गलती थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं किसी काम में लग गई, अब मैं इस बच्चे को बांध करके रखूंगी, लो मैं आपको दूसरी सामग्री देती हूँ, ये छोड़ दो। ब्राह्मण ने दूसरी बार भोजन किया, फिर वो भगवान के भोग लगाए तो फिर भगवान आ गए, फिर भगवान खीर सबोड़ने लगे। अब तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ तो माता ने उस ब्राह्मण के सामने बच्चे को पीटा, कन्हैया को पीटा, तो रोते रोते भगवान के, मैया मुझे क्यों पीटती हो, मैं क्या करूं, ये ब्राह्मण मुझे बुलाते हैं तब आता हूं, बिना बुलाए थोड़ी आता हूं, ये मुझे बुलाते ही क्यों है, नहीं बुलावे तो मैं नहीं आता। तब वो ब्राह्मण देवता झर झर रोने लग गया, करे मेरे कारण से मेरे आराध्य की पिटाई हो रही है। अब ब्राह्मण देवता खूब रोने लगे और यशोदा जी के आंगन में लोटपोट हो गए। यशोदा जी ये तो ब्रह्मलोक से बढ़कर आपका ये आंगन है, जहाँ यहाँ ये कृष्ण चलते हैं, सोते हैं, दौड़ते हैं, उनके चरणों की रज है, ये मुक्ति से भी बढ़कर है, बैकुंठ से भी बढ़कर है, ऐसा भाव में वो डूब गए एकदम और वे बड़े तृप्त होकर के चले गए। ऐसे भगवान साकार रूप में कितनी प्रेम की लीला करते हैं, उनमें तो हमारा मन जाता नहीं और सांसारिक विषय भोगों में रम रहा है, धिक्कार है। तो ये बात तो हमने आपको कंचन कामनी के लिए कही, अब हम मान बढ़ाई के लिए बोलते हैं। मान बढ़ाई और ईर्ष्या ये कम खतरनाक नहीं, बहुत खतरनाक है। स्वामी जी आए, आपने बड़ी पूजा की, बड़ा मान सत्कार किया, मैं आया मेरा भी वैसा ही सत्कार किया, तो हम कहेंगे वाह वाह, यहाँ के लोग तो बड़े श्रद्धालु हैं, बड़े अच्छे हैं। और कहीं हम गए और हमारा किसी ने मान नहीं किया, उल्टा स्वामी जी को भी कुछ कह दिया, हमको भी कुछ कह दिया, तो हमारे मन में आता है अरे कहाँ आ गए, यहाँ आना ठीक नहीं है, यहाँ तो कोई आदर सत्कार नहीं, यहाँ ऐसा नहीं। तो ये क्या है, ये हमारी मान की इच्छा है, इसमें हम फंस जाते हैं। कंचन कामनी इन दो घाटियों के त्यागने के बाद मान बढ़ाई की घाटी भी कम नहीं है, इसलिए गीता में मानाप मानयोस्तुल्य है, कहते हैं आपके मान और अपमान में एक जैसी वृत्ति रहनी चाहिए, न मान में हर्ष होना चाहिए न अपमान में आपके मन में किंचित मात्र भी शोक होना चाहिए, दुख होना चाहिए। ये घाटी भी साधक के लिए कोई विशेष बात नहीं, इसका भी त्याग हो सकता है। आप कहें कि भाई आप तो धर्मात्मा हैं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, आपकी सेवा करूंगा तो हमारा उद्धार हो जाएगा, हमारा पैर धोकर के आप पिएंगे, जूठन खाएंगे, मैं भी समझ लूंगा कि चलो विचारों का उद्धार होता है, होने दो। तो ये भाव मेरा पतन करने वाला है, यही मामला गड़बड़ है। साफ लिखा, जहां ये भाव है कि चलो मेरा पैर का पूजन करते हैं, जूठन खाते हैं, पैर धोकर पीते हैं, तो इनका उद्धार होगा तो क्या हर्जा है, यही मामला गड़बड़ है, ये बहुत गड़बड़ मामला है। ऐसा भाव अपने में आता है, ये मान को स्वीकार करना है, मान को स्वीकार कर देने पर ये हमारा पतन है। स्वामी जी बड़े अच्छे हैं, पुष्पमाला पहनाते हैं तो वे फेंक देते हैं, कपड़ा फट जाता है तो वो लेते नहीं है, पूजा प्रतिष्ठा तो बहुत खराब है, पूजा प्रतिष्ठा स्वीकार करें तो समझना चाहिए कि स्वांग है, कोई अपमान करता है तो दुख होता है, कोई मान करता है तो प्रसन्न होता है, यही तो सबसे बड़ी बीमारी है। मान से यदि परे हो जाए तो फिर बड़ाई कहती है कि अच्छा अब हमारे राज में आए हो, हम तो देखो आपको रोक ही लेंगे। भाई इस बड़ाई से तो बहुत कम ऐसे आदमी है जो पार हो पाते हैं, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनको भी बड़ाई घेर लेती है। जैसे पतंग है, बहुत ऊंचा आकाश में उड़ता है लेकिन पतने से सूत से वो बंधा रहता है, इसी प्रकार से मान बड़ाई होती है, ये हम सबको बांध लेती है, ये माया का सूक्ष्म रूप है बड़ाई। अपनी बड़ाई के लिए करना ये बहुत मामूली, बहुत खतरे की बात है, मामूली बात नहीं है। मान बड़ाई की डोरी से मनुष्य बंध जाए और साधक बंध जाए, ये कोई कम आश्चर्य की बात नहीं है। इसके आगे ईर्ष्या है, जैसे शरणानंद जी की तो पूजा हो गई, मेरी नहीं हुई, तो मेरे मन में विचार आ गया कि भाई मेरे से ज्यादा इनकी प्रतिष्ठा क्यों हो गई, ये तो इतने त्यागी भी नहीं है, मैं तो त्यागी हूं, मेरी प्रतिष्ठा नहीं हुई, इनकी प्रतिष्ठा क्यों हो गई, ये अंधेरा है, ये ईर्ष्या है। मान बड़ाई में कमी आ जाए तो कोई बात नहीं, दूसरों की प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, हमसे कोई बढ़कर नहीं है, ऐसा कोई महात्मा हमारे जैसा है क्या, ये जो भाव आता है ये भाव बहुत पतन करने वाला होता है, ये अहंकार का तंतु है। शरीर में देहाभिमान है, जीव भाव है, ये अहंकार से सब दोष पैदा होते हैं। अहंकार का नाश करो, अहंकार को भगवान के साथ जोड़ दो। शरीर को मैं मानोगे तो अहंकार होगा, और भगवान के साथ जुड़ोगे कि मैं भगवान का हूं तो अहंकार का नाश हो जाएगा। इस यथार्थ बात को स्वीकार करो, आपका अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। जप तप ध्यान स्वाध्याय वैराग्य ये सब बड़ी उत्तम चीजें हैं। गीता जी में कितनी बढ़िया बात कही है, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, आसक्ति रूप शस्त्र के द्वारा संसार रूप वृक्ष को काट डालो। काटना क्या है, भीतर से संबंध विच्छेद करना है, कोई संसार में मेरा नहीं है, कोई नहीं है, अकिंचन हो जाओ। अकिंचन, अकिंचन माने मेरा कुछ भी नहीं है, न मेरा शरीर ही मेरा नहीं, मन बुद्धि भी मेरी नहीं, कोई मेरा नहीं है। खूब गहराई से अंदर से विचार करो तो ये असंगता आएगी, तो इसे संबंध विच्छेद करना बहुत सुगमता होगी। और असंगता में फिर विचार करो कि सिवाय परमात्मा के और कौन मेरा हो सकता है। आर्त होकर के भगवान की शरण में जाओ। जैसे कोई खतरे से बचता हो, आग लगी हो और वो बचने के लिए प्रयत्न करता हो, पुकारता हो, भाई कोई मुझे बचाओ बचाओ, ऐसे भगवान के लिए संसार के अंदर घबराते हुए प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान आप हमको बचाओ, आप हमको बचाओ। ऐसा भगवान से बार बार प्रार्थना करने से, आर्त भाव से प्रार्थना करने से, अहंकार का जो सूक्ष्म अणु है वो भी समाप्त हो जाएगा। परमात्मा की चीज परमात्मा को अर्पण कर दो, शरण हो गया तो उद्धार भी हो गया, सूर्योदय हो गया तो अंधकार का भी नाश हो गया, प्रकाश हो गया तो अंधकार अपने आप मिट गया। ऐसे ही भगवान के शरण हो गए तो अब सब प्रकार का हमारा क्लेश भी दूर हो गया। इस प्रकार की बात, ये वैराग्य की बात बहुत अच्छी लगती है। चाहे हमारे मन में वैराग्य न हुआ हो तो मत हो, लेकिन वैराग्य की बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। कभी कभी ऐसी मन में आती है सारा समय वैराग्य में ही लगे। अच्छे अच्छे आदमियों की प्रवृत्ति में रुचि है, परंतु हम लोगों की ये भावना होनी चाहिए कि वैराग्य के अंदर रुचि हो। वैराग्य का एक नशा रहना चाहिए। वैराग्य नहीं हुआ हो तो 100 युक्तियां लड़ाओ। जैसे किसी दुकान में लाभ नहीं होता है तो वो अनेक प्रकार की युक्तियां लगाता है, कैसे लाभ हो सकता है, ग्राहक को कैसे पटा सकते हैं, कैसे माल को सस्ता भी देकर के अपना बाजार में प्रतिष्ठा कमा सकते हैं। हमारी गुडविल होनी चाहिए, माल तो फिर भी बिकता रहेगा, थोड़ा बहुत घाटा भी सहन कर लेते हैं, विज्ञापन छपाते हैं, जाने क्या क्या करते हैं, कोई बड़ा सौदागर है तो उससे संपर्क करते हैं, चाहे वो किसी भी जात का हो, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो, हमारा माल यदि उसके वहां खपता है तो हम उससे किसी प्रकार से मित्रता करेंगे। परंतु इधर हम ध्यान ही नहीं देते हैं। वैराग्य न हो तो 100 युक्तियां लड़ाओ, कोई न कोई तो काम आएगी। ध्यान में मस्त रहो, जप करो, साधन करो, उसमें ध्यान साध्य है, भगवान भी साध्य नहीं है, ध्यान साध्य है। ध्यान वैराग्य में ही चलो, वैराग्य में ही उठो, वैराग्य में ही घूमो, अब वैराग्य में तरबतर रहे, गोला बरसे, पत्थर बरसे, बरसता रहे, परंतु भगवान के ध्यान में मस्त रहो। किसी ने प्रश्न किया कि 12वें अध्याय में तो ध्यान से बढ़कर कर्म फल का त्याग बताया है। हाँ, अपने आप में सब अच्छी चीजें हैं, कर्म बड़ा तो कर्म फल का त्याग ही है, परंतु भगवान ने यह भी तो कहा है ना कि ध्याने नात्मनि पश्यन्ति केचिद् आत्मानम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। ध्यान को भी कम महत्व नहीं दिया है। स्वार्थ रहित क्रिया, उसमें जो त्याग होता है ये कर्म फल का त्याग है। ध्यान के अंदर त्याग की थोड़ी कमी तो दिखती है, परंतु कर्म फल का त्याग का अर्थ क्या है? अर्थ यही है कि किसी प्रकार की हमारे किसी कर्म से कोई संबंध न रहे, निष्काम भाव से किया हुआ छोटा भी काम बहुत ऊंचा होता है, और भजन ध्यान जैसा ऊंचे से ऊंचा काम भी यदि निष्काम भाव से नहीं किया तो वो छोटे से छोटे काम से भी नीचा है। कर्म करो पर सेवा भाव से करो, भगवान का भजन बनाओ, उस कर्म को ही भगवान का भजन बनाने का हमारे पास उपाय है। वो क्या है? ये कर्म भगवान का ही है। भागवत में आता है एक सद्गुण संपन्न ब्राह्मण है लेकिन भगवान की भक्ति नहीं है, और एक तरफ चांडाल है जिसमें भगवान की भक्ति है, तो ब्राह्मण से बढ़कर वो चांडाल ऊंचा माना गया है। भगवान ने कहा मई एव मन आधत्स्व, मेरे में ही मन लगाओ, अभ्यास करो, मदर्थ कर्म करो और सर्व कर्म फल का त्याग करो, ऐसे वैराग्य के अंदर मस्त रहो। ये बात बताए। अब आज आज तक तो यही है, कल से अपने रामचरितमानस का चित्रकूट में राम जी का और भरत जी का मिलन हो गया, उसके बाद की कथा की बात चलेगी। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम सियावर रामचंद्र की, मोर मुकुटवंशी वाले की, अनंत श्री हरि रामदास जी महाराज की, अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय जय जय।